السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. رمضان المبارك آخری ہفتہ، آخری عشرے کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا، اور اس کے ہم سے جدا ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں. اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دیں، کیونکہ ایک دن 29ویں ہوگی، 29th، اور تب کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو بہت کچھ کرنا تھا. تو یہ چند دن کا مہمان ہے اب، اور جو چند دن کا مہمان ہو اس کی آؤ بھگت بڑھا دی جاتی ہے. اگلے سال اگر زندگی رہی تو وہ اگلے سال کا رمضان ہوگا، یہ والا نہیں ہوگا. یہ تو دوبارہ کبھی نہیں لوٹے گا. لہٰذا جو جتنا کر سکتا ہے اپنے آپ کو پش کرے، اپنی ایفرٹ بڑھائے. جو جاب کرنے والے ہیں چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لیں، جو نہیں لے سکتے وہ کام کا لوڈ تھوڑا کر لیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ضروری تو ہوتی ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہوتی. تو اپنے کاموں میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہیں، یعنی وہ ایک ہفتے بعد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی اگر ایک ہفتے بعد ہم ان کو کر لیں گے اور ابھی ڈیلے کر دیں گے. کیونکہ اس وقت فوکس صرف دو چیزوں پہ ہونا چاہیے، ایک کا تو آپ کو پتہ ہے عبادت، اور دوسری کیا ہے؟ آرام. آرام کس لیے؟ کہ یہ انسان کی مشینری جو ہے وہ مسلسل کام نہیں کر سکتی. مسلسل چلے گی تو خشوع نہیں رہے گا، دماغ بند ہو جائے گا، نیند آئے گی. تو اس لیے آرام کرنا ہے کہ ہم تازہ دم ہو کے پھر اچھی عبادت کر سکیں، جیسے ہم نے کل نیتوں کی بات کی تھی. لیکن یہ یاد رہے کہ آرام کرنے لگے تو ایسا نہ ہو کہ سارا دن بستر ہی نہ چھوڑے اور لیٹے لیٹے فون دیکھتے رہیں. تو لیٹنے تب جانا ہے جب نیند آ رہی ہو، تاکہ لیٹتے ہی سو جائیں، اور جب جاگیں تو پھر مصلی کی طرف دوڑیں، افطاریاں ذرا کم کر دیں، ڈشز بنانی کم کر دیں، ایک ڈش پہ اکتفا کریں. گھر کے کام کاج اور دوسری بھاگ دوڑ اور کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں تو وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، ورنہ 29 کو یا 30 تاریخ کو بڑا ریگریٹ ہوگا کہ کاش میں نے اپنا وقت نہ ضائع کیا ہوتا. دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے، لوگ تو سب دوڑ رہے ہیں نیکی میں، تو کہیں میں لوزر نہ ہو جاؤں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اصل میں بات یہ ہے، یہ دوڑ نظر نہیں آتی نا، ورنہ تو شاید ہم بڑے شرمسار ہوں اس بات پہ کہ لوگ آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دن گزارتے تھے ایسے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، ان سے نہیں ملتے تھے، اور پوری یکسوئی سے عبادت کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے. تو رحمت کے، بخشش کے، برکتوں کے دروازے اس وقت وائڈ اوپن ہیں، دوڑیں اور یہ خزانے لوٹ لیں. اور جو آج ارجنٹ کرنا ہے सिर्फ उस काम को करें और जो डिले हो सकते हैं उनको छोड़ दें, जो कम हो सकते हैं उनमें कमी कर लें, सोशलाइजिंग कम कर दें, टेक्सटिंग कम कर दें, बातचीत इधर उधर कम कर दें और डिफाइन करें कि मैंने अपने ये दिन कैसे गुजारने हैं, ये रातें कैसे गुजारनी हैं। कल हमने यही बात की थी ना कि हमें नेकी के मामले में वैसे स्मार्ट होना है जैसे बिजनेसमैन पैसे के मामले में स्मार्ट होता है, उसको जरा सा भी नुकसान गवारा नहीं होता, वो हर जगह पर चाहता है कि मैं किस तरह से अपना फायदा बढ़ा लूं। ये जो दिमाग में ख्याल आता है ना, फलां को फोन करना था, बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, तो जहां इतने दिन बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, थोड़े और दिन ठहर जाएं, ईद पे बात कर लीजिएगा, फलां चीज है वो खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो कोई नहीं रमजान के बाद आप खा लीजिएगा, ईद की शॉपिंग करनी है तो कोई नहीं, ये ईद पे अगर कोई कमी भी रह जाएगी तो कोई मसला नहीं, अगले साल आप रमजान से पहले शॉपिंग करके रखिएगा। लेकिन इन कीमती दिनों और रातों को मैं जितना एम्फसाइज कर सकूं ना वो भी कम है, जितना मैं आपको बता सकूं वो कम है, आपको पता ही नहीं कि आपको मिल क्या गया है। इसीलिए अफसोस होता है ना कि इंसान को पता ही नहीं कि उसके हाथ में कितना बड़ा खजाना आ चुका है, कितनी बड़ी दौलत है जो आपको मिल चुकी है। कई लोग इस दौलत को जाया कर देंगे फजूलियात में, वो एक ऐसी चीज नहीं है जो बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा ना एक चीज जरूरी होती, हो सकता है जरूरी हो, बेशक आप कोई गैर जरूरी काम तो नहीं कर रहे होंगे, यकीनन फजूल पार्टी नहीं कर रहे होंगे, फजूल ऐसे ही इधर उधर बैठ नहीं रहे होंगे, जाहिर है अच्छे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो अर्जेंट है? तो बहुत जरूरी है ये बात समझ लेना कि मैंने ये जो दिन हैं और ये जो रातें हैं इनको बहुत वाइजली प्लान आउट करना है और बहुत समझदारी के साथ गुजारना है। तो पहला काम एक जैसे हम करें कि नमाज को हमने और अच्छे तरीके से पढ़ना है, मजा लेके पढ़ना है। हाँ नमाज में भी मजा आता है, हमें तो नमाज का पता ही नहीं ना कि इसमें भी मजा होता है, तो कैसे मजा लेंगे? ये जितना कुरान आपको याद है वो थोड़ा थोड़ा करके, चाहे दो चार आयतें ही पढ़ें लेकिन हर रकत में वो पढ़ेंगे। मसलन आपको 30वां पारा याद है तो उसकी सूरत को एक आध दफा देख के फिर उसके बाद वो पढ़ें, यानी वो ही जो आप टिपिकल पहले पढ़ते थे वो नहीं, जो आपने याद किया है। और जिन्होंने कुछ भी याद नहीं किया हुआ ना वो भी कुछ ना कुछ याद करने के लिए इरादा कर लें। और जब आप नमाज पढ़ें तो बहुत आराम से पढ़ें, ऐसे जैसे आपको कोई और काम है ही नहीं, आप दुनिया के फारिग तरीन इंसान हैं, ऐसे नमाज पढ़नी है, कोई जल्दी ना हो। इसी तरह कयाम करें, रुकू करें, सजदा करें, ठहर जाएं। अगर आप पहले 5 सेकंड का रुकू करते थे तो अब उसको बढ़ा दें, 15 सेकंड का करें, गिनने नहीं है सेकंड्स, मगर जितना पहले करते थे उससे ट्रिपल कर लें, उसी पोजीशन में रहें इतनी देर रहें कि आपको लगे कि कुछ देर हो गई है, देर लगाएं उसमें, जल्दी का काम नहीं हमने करना। ये बताएं कि जब कोई चीज हमारी महबूब होती है तो उसमें हम कभी जल्दी पसंद करते हैं? मसलन है आप अपने किसी प्यारे से बात करें, आपका बच्चा आकर सर पे खड़ा हो जाता है, जल्दी करें जल्दी करें मुझे आपसे बात करनी है, बंद करें फोन, तो आप फोन बंद करके कहते हैं मुझे चैन से बात भी नहीं करनी थी, अरे तो मैं इतने मजे से बात कर रही थी, हालांकि पिछले आधे घंटे से बात हो रही थी, फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत जल्दी बंद करा दिया। शॉपिंग पे गए मैं और हस्बैंड कह दे बेगम जल्दी करो जो चीज लेनी है वो लो और निकलो, तो कहते हैं ना मजा ही नहीं आया। कुछ अच्छी तरह देखने ही नहीं दिया। इवन अगर हम खाना खा रहे हो, कोई हमारे सर पे खड़ा हो जाए ना, जल्दी करो, तो हम कहते हैं कि खाने का मजा ही नहीं आया, इतनी जल्दी मचा दी थी। तो जो काम हमें अच्छे लगते हैं ना, उनमें हमें कभी भी जल्दी पसंद नहीं होती। चाहते हैं आराम से करें, तसल्ली से करें, मजे से करें, इंजॉय करके करें। नमाज को भी ऐसा बनाना है। ये बात मैं किताबों से नहीं बता रही, मैं आपको गारंटीड बता रही हूं। आप ऐसी नमाज पढ़ के देखिए, इसी तरह आराम आराम से, बहुत आराम से। मैंने कहा जैसे कि दुनिया का कोई काम आपको है ही नहीं। चले आप सारी नमाजें वैसी नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम जैसे जोहर है, असर है, इनको ही पढ़ लें, फजर है, क्योंकि ईशा वगैरह तो फिर हम मस्जिद वगैरह में जाते हैं, अफ्तारी का उठाने वगैरह का फिक्र होता है मगरिब के अंदर, तो शायद ख्वातीन वैसी तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन बाकी तो पढ़ सकती हैं। जोहर वगैरह पढ़ के देखें। और बिल्कुल नहीं आपने सोचना कि चूल्हे पे क्या रखा हुआ है, अफ्तारी में कितना टाइम रह गया, बच्चा स्कूल से आया कि नहीं आया, फलां को एक बात टेक्स्ट करनी थी तो मुझे भूल ही गई थी, अभी करनी है वरना फिर भूल जाएगी। नहीं, जितनी देर आपने मुसल्ले पे खड़े होना है, पर कर लें जो काम आपने पहले करने हैं। जब आप मुसल्ले पे खड़े हो गए तो वो नो गो एरिया बन गया, दुनिया के कामों के लिए नो गो एरिया। अब आप इस टेरिटरी में आ गए हैं जो दुनिया की नहीं है, आप कहीं और पहुंच गए हैं, आपकी मेराज आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तो जब आप ऐसे रुकू करेंगे और ऐसे सज्दे करेंगे और अपने हिफ्स में के पोर्शन में से क़याम करेंगे, आप उसके बाद जब सलाम फेरेंगे ना, आपको इतना सुकून आया होगा, इतना मज़ा आया होगा कि मैं इसकी गारंटी देती हूँ। आप ये इस हफ्ते करके देखें, और एडमिन्स आपके पास मेरी ईमेल शेयर करती हैं, आप उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी नहीं बताना, लेकिन आफ्टर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में तो मैं अपनी ईमेल्स नहीं चेक कर रही, कोई मुझे ईमेल कर रहा है तो ये भी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, मेरे पास और काम है जिनको मैंने करना है। तो आपने अब जो बाकी महीना रह गया उसमें इस तरह की नमाज पढ़ के देखें, और फिर आप उसके मजे को जब पाएंगे तो ऐसा मजा किसी और चीज में नहीं। दूसरे ये कि अपनी कुरान की जो आपने जो जहां पे पढ़ रहे हैं उसकी स्पीड और कर लें। अगर एक भी कुरान आपका भी नहीं खत्म हुआ हुआ तो ये जरा परेशानी की बात है। इब्ने जौजी फरमाते हैं जो रमजान में कुरान की तिलावत करके उसको खत्म ना करे तो आम तौर पर वो पूरे साल में भी खत्म नहीं कर पाएगा, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे तो। और कुरान खत्म ना करना रमजान में एक तरह की महरूमी है, जिस पर लाजिम है कि इंसान दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरे दिल से गफलत को दूर कर दे, और कोई ये ना कहे हमारे टाइम नहीं मिला था, और कोई ये ना कहे कि हमारी स्पीड बहुत स्लो थी इसलिए। नहीं, आपने उतना टाइम नहीं दिया इसका मतलब उसको कि एक दफा भी खत्म नहीं कर पाए, तो अभी भी दिन बाकी हैं। अगर नहीं खत्म हुआ तो रेस अगेंस्ट टाइम है, छोड़ दें सब कुछ, हर चीज दुनिया की चलती रहती है और चलती रहेगी, मगर जिस दिन रमजान की 29 तारीख होगी या 30 होगी, सूरज गरूब हो गया, तो बस फिर वो अजर जो इस वक्त आपको मिल सकता है हजारों गुना ज्यादा का, उसका दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसीलिए जब शव्वाल का चांद नजर आता है, ठीक है, खुशी तो होती है, मगर साथ ये गम भी होता है कि वो इतने कीमती दिन जिनमें बेशबहा अजर था, कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो अब खत्म हो गया। अब वही सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो नॉर्मल है वो, ठीक है, उसका अजर जितना 10 गुना, ऐसे नहीं होगा जैसे अभी कह सकते हैं, और जैसे अभी आपके अजर के पहाड़ लग रहे हैं एक एक तस्बीह के ऊपर, हजार हजार गुना आपको ज्यादा अजर मिल रहा है। एक एक हर्फ पढ़ने पे कुरान के कितना अजर मिल रहा है, उतना थोड़ी होगा। उस वक्त तो आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सदका करें, उस अजर को कभी नहीं पहुंच सकते जो रमजान में होता है, जो इन दिनों और रातों में है। तो अभी भी हम लास्ट डे पे नहीं पहुंचे, अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर किसी की जॉब पे उसका बॉस उसको एक प्रोजेक्ट दे दे और कहे मुझे एक हफ्ते में काम करके दो, तो क्या करेगा वो? ना दिन देखेगा ना रात। रातों तक लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, टैक्स सीजन होता है तो लास्ट डे होता है, उसके ऊपर कितना काम होता है उनके पास। वो ना दिन देखते हैं ना रात, क्योंकि उनको पता होता है इस डेडलाइन तक हमने खत्म करना है। अब हमारी भी ये रमजान की डेडलाइन बहुत करीब आ गई है, तो इस तक हमने खत्म करना है ये काम। और जिन्होंने एक कुरान खत्म कर लिया, दूसरा पढ़ रहे हैं या तीसरा पढ़ रहे हैं, और कहीं पे भी वो पहुंचे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो प्लान करें कि कैसे हम इन दिनों के अंदर खत्म करेंगे, किस तरह से हम ऐसा करें कि हमारा आखिरी दिन तक कुरान मुकम्मल हो जाए। तो इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, इसके लिए सोचना होगा, इसके लिए आप को देखना होगा कि कौन से टाइम पे मैं पढ़ूं। तो इधर उधर की बातें कम कर दें, तेजी दिखाएं, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें इस तरफ। और ये वो वक्त है जब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये तो कमाई के दिन है। आप खुद को उस बर्फ फरोश की तरह समझें, बर्फ फरोश समझते हैं ना जो बर्फ बेचता है, बर्फ का ब्लॉक उसके पास होता है ना, पहले जमाने के अंदर ऐसे रेड़ियों पे रखे होते थे उन्होंने और बेच रहे होते थे बर्फ, तो उसकी तरह खुद को समझें। अब वो जो बर्फ बेच रहा होता है उसकी बर्फ पिघल रही होती है मुसलसल, और उसको क्या लालच होता है कि मैं जल्दी इसको बेच दूं, क्योंकि जितना डिले होगा उतने ही उसकी प्रॉफिट में कमी होगी, हद तक कि इन्वेस्टमेंट भी जाती रहेगी, जितने की उसने खरीदी थी वो खरीद भी नहीं उसको मिलेगी अगर टाइम ज्यादा गुजर गया तो, क्योंकि वो तो पानी हो रही है। तो उसको ये फिक्र होती है कि जल्दी मेरी बर्फ जितनी जल्दी बिक जाए उतना अच्छा है। वो ये नहीं कह सकता कोई बात नहीं आज नहीं बिकी, बिकी तो कल बेच लूंगा, नहीं, क्योंकि कल तक तो खत्म हो चुकी होगी वो। तो हमारी जिंदगी भी उस बर्फ के ब्लॉक की तरह जो मुसलसल कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, अगर इसको इस वक्त हमने कहीं नहीं लगाया अपनी जिंदगी को, तो याद रखिए टाइम तो गुजर रहा है, बर्फ तो पिघल रही है, और इस वक्त इस बर्फ को अगर आप बेचेंगे ना तो 70 टाइम्स मोर प्रॉफिट है, इतना बढ़ के मिल रहा है। और जूं ही रमजान खत्म हो जाएगा फिर रेगुलर प्राइस होगी, ठीक है प्रॉफिट तो तब भी होगा मगर उतना तो नहीं होगा जितना आप मिल सकता है। तो बेवकूफ होगा जो इस वक्त की फिक्र ना करें, इस वक्त जब प्रॉफिट कई गुना है वो फिर भी वक्त को जाया कर रहा हो। तीसरी चीज ये कि नियत कर लें कि आज जितना मुझे कुरान समझ आता है और जितना मुझे हिफ्ज है और जितना मैं वक्त आज लगाती हूं, इससे मैंने ज्यादा बढ़ाना है। मैं आज जहां पे खड़ी हुई हूं इससे ज्यादा मुझे बेहतर होना है। आज मुझे कुरान जितना समझ आया है तरावी में, अगले साल की तरावी में इससे ज्यादा समझ आना चाहिए, और इसके लिए मैंने क्या करना है। ये छोड़ दें कहना कि मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है या मेरे पास तो टाइम ही नहीं, ये कहना, ये एक्सक्यूजेस दोनों छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि जब आपने लगा के ही नहीं देखा जहन, जहन तो इससे तेज होता है कुरान से। जी हाँ, जिनके जहन नहीं चलते उनके भी चल जाते हैं, ये तो अल्लाह ताला के कलाम का मौजज़ा है, उसकी बरकत है। ये आम चीजों की तरह थोड़ी है। और जिनके पास वक्त नहीं भी होता, उनके वक्त में भी बरकत हो जाती है, कुरान बरकत ले आता है। तो ये दोनों बहाने छोड़ दें, बस ये जरूर करें कि मुझे अगले साल इससे बेहतर होने के लिए क्या करना है, उसकी प्लानिंग करें, उसके लिए कोई स्टेप उठाएं। ठीक है ना, जिसने हमने कल बात की थी ना, जिसने कुछ मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल को अचीव करना है, फिर वो कब से शुरू करता है? अव्वल रात से निकलता है, शुरू में ही अपना सफर शुरू करता है। वो ये नहीं कहता अच्छा कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, कोई बात नहीं अभी कुछ दिन बाद ही चला जाऊंगा। वो अव्वल रात से ही शुरू कर देता है, वो ये आधी रात गुजरने का इंतजार नहीं करता। तो ये दिन है अपना मुहासबा करने के, पहले तो ये चेक करें मैं किस जगह पे इस वक्त खड़ी हूं और फिर मुझे कहाँ पहुंचना है। ऐसा नहीं करना कि हर साल रमजान में मैं वहीं पे होती हूं जहां पे पिछले साल थी और कोई चेंज नहीं आया होता। और जिसके साथ मैंने रमजान, फर्स्ट रमजान शुरू किया था, वहीं पे मैं एंड कर रही हूं, ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये कोई भी चेंज ना आना, ये अच्छा साइन नहीं है। आप सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, मैंने अगर बेहतरी नहीं मेरे अंदर आई तो कोई बात नहीं, कमी भी नहीं आई, ये धोखा है। या तो आपके अंदर बेहतरी आएगी या फिर आप में कमी हो रही है, वहीं के वहीं कभी नहीं रहते। कैसे? इसलिए कि मसलन आज जो आपकी जो भी उम्र है, आपको मसलन है कोई, चलिए किसी की बात करते हैं, किसी को 70 साल की उम्र उसकी लिखी गई है, उसको 70 साल जीना है, आज वो अगर 40 साल का है तो अगले साल क्या होगा? 1 साल कम हो जाएगा। पहले उसके पास 30 ईयर्स थे जीने के लिए और रह गए, अब कितने रह गए? 29, फिर अगले साल 28, फिर अगला रमजान आएगा 27। इस तरह वो डिप्रिशिएट कर रहा है और वो सोचता है कि मेरे अंदर बेहतरी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कमी भी तो नहीं आई, कमी तो आ रही है। उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि उसके पास टाइम अब कम होता जा रहा है, एक एक साल गुजर रहा है, टाइम में कमी आ रही है। और टाइम कम होने का मतलब क्या है? अमल का मौका कम होना। जहां तक उसको पहुंचना था वो वहां तक पहुंच नहीं सकेगा, इसलिए कि टाइम अब कम रह जाएगा, उसके पास शॉर्ट टाइम रह जाएगा। तो लिहाजा उसको तो तेजी दिखानी चाहिए। तो इस चीज के ऊपर सेटिस्फाइड ना हो कि पिछले साल भी यहीं पे थी, इस साल भी यहीं पे हूं और कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है। तो बेहतरी करनी है वरना डिक्लाइन होगा। हाँ, तो अपनी सूरत हाल, अपनी ईमानी कंडीशन को इवेलुएट करना है सबसे पहले। इवेल्युएशन चेक करें कहाँ पे थी पिछले साल, कहाँ पे हूँ इस साल। आपको पता है ये तो हमारी जो ईमानी हालत है, ये तो फरिश्ते भी लैलतुल कदर में जो उतरते हैं वो चेक करते हैं, पिछले साल ये बंदा कहाँ था और इस साल कहाँ है। पता है आपको ये बात? वो देखते हैं नेकी के हवाले से, इसमें बेहतरी आई कि नहीं आई, या वो पहला भी गया। ईमान के लिहाज से ये किस जगह पे है? जैसे हम अपने खाते चेक करते हैं ना, फाइनेंस चेक करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं, पिछले साल कितना था, इस साल कितना हो गया, हिसाब किताब तो लगाते हैं ना। तो ये फरिश्ते, हम तो पता नहीं अपना लगाते हैं या नहीं, लेकिन ये फरिश्ते इस तरह से इंसान का हिसाब किताब चेक करने आते हैं और सिर्फ लैलतुल कद्र पे उतरते हैं। पूरे साल की जो हमने इंप्रूवमेंट की होती है इसको इस वक्त देखते हैं, या पूरे साल में जो कमी की तरफ चले गए वो भी चेक करते हैं। इसी रात में जो लैलतुल कदर है, पिछले साल रमजान में आए थे और इस साल रमजान में आते हैं, बीच में नहीं वो आ रहे, उनको बीच में नहीं कुछ पता कि क्या हो रहा है, उनके पास कोई गैब का इल्म नहीं, लेकिन वो लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। पता नहीं हम तो इतने गाफिल हैं कि हम अपनी कंडीशन कभी नहीं खुद कंपेयर करते, मैं पिछले साल कहाँ थी, इस साल कहाँ हूँ, मेरे पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, मैंने क्या इम्प्रूव किया है, कुछ नहीं सोचते हम, लेकिन वो देख रहे हैं, वो विटनेस करते हैं। और सिर्फ वो खुद नहीं देखते, बल्कि बाकी जो फरिश्ते आसमानों के हैं वो भी इनसे पूछते हैं कि उसकी क्या रिपोर्ट है, जब ये ऊपर वापस जाते हैं। मसलन अगर आज लैलतुल कदर है, तो ये अब जो फरिश्ते इस वक्त होंगे ये ऊपर जाएंगे, और वो फरिश्ते जो डिफरेंट आसमानों के हैं वो इनसे पूछते हैं, हदीस से पता चलता है। वो कहते हैं कि उस फलां बंदे की क्या हालत थी, फलां कैसा हालत से, मतलब नहीं कि वो अमीर हुआ है कि नहीं, उसने कितना पैसा कमा लिया, अब वो कितनी लेविश लाइफ गुजार रहा है, तो ये देखते हैं कि ये बंदा भी ईमान में कैसा है, साले अमल करने में, नेकियों में कितना आगे। अब जो फरिश्ते वहां पे होते हैं, इसका मतलब है कि एक तो उनको ये पता है कि लास्ट ईयर ये क्या था और इस साल की वो रिपोर्ट पूछ रहे हैं, और दूसरे ये कि उनको याद होता है कि पिछला साल इसका कैसा था। तो ऐसा नहीं कि कलेक्टिव बता रहे थे, जैसे हम कहते हैं ना आजकल तो लोग ये कर रहे हैं, आजकल लोग वो कर रहे हैं, हम सारे एक कलेक्टिव ही एक वो रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं, तो वो कलेक्टिव नहीं बताते कि आजकल तो लोग दुनिया में तो सारा ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं, एक एक ईमान वाले के साथ ना उनका एक रिश्ता है, सुभान अल्लाह, एक एक का नाम लेके बताते हैं। अल्लाह हू अकबर, आप खुद सोचें कि वहां पे अगर जिक्र हो रहा हो कि आयशा ये कर रही थी, साइमा वो कर रही थी, और दूसरे फरिश्तों को बताया जा रहा हो, कैसा लगेगा हमें। यहाँ पे पता चल जाए ना कि कोई वीआईपी या कोई प्रेसिडेंट की जो मीटिंग थी उसमें कोई हमें आके बता दे कि जी आपको पता है वो आपको मेंशन कर रहे थे, वो कह रहे थे आपके बड़ी तारीफ कर रहे थे उसमें, अल्लाह हू अकबर, हम तो फूले नहीं समाएंगे, हमारे तो जमीन पे पैर नहीं टिकेंगे, इतनी हमें खुशी होगी। तो कितना वो खुशकिस्मत है जिसकी तारीफ फरिश्ते जाके ऊपर दूसरे फरिश्तों के सामने करें कि फलां पिछले साल तो थोड़ा कम था, इस साल तो उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है, या अल्लाह हमें उनमें शामिल कर दे जिनके लिए फरिश्ते ये तारीफ करें। हर साल जब वो लैलतुल कद्र में उतरे हो तो वापस जाके वो आसमान के फरिश्तों को हमारी नेकी की बातें बताएं और नेकी में और बढ़ने की बातें बताएं, तो वहीं ना रुके रहें, आगे बढ़ें। वो अब वो फरिश्ते जब उसकी तारीफें सुनते हैं ना इनकी जुबान से, अब उनको तो नहीं पता, वो तो ऊपर है, उनको क्या पता जमीन पे क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो ऊपर से देख तो नहीं रहे होते। अब जब इन्होंने जाके उनको बताया, तो उनको इतनी मोहब्बत है उन लोगों से जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए थक रहे हैं, अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, रातों में जागा हुआ, अब ये देख के गए हैं ना, तो ये वहां जाके बताते हैं। आपको पता है पहले, आज से कोई 50 साल पहले कह लें, कि जब ये फोन वगैरह का इतना ज्यादा नहीं था, तो कोई किसी का कोई प्यारा बाहर के मुल्क चला जाता था, तो उनसे कोई मिल के आता था, तो फिर वो आके बताता था जी वो ऐसे हैं वहां पे, ऐसे रह रहे हैं, ऐसे करते हैं ये, तो बड़े शौक से लोग सुनते थे, क्योंकि जाहिर है ना, या ये वीडियो कॉल्स थी ना कुछ, आप ऐसे समझ लें कि वो उनको जाके सारी बताते हैं, वो जमीन पे ऐसे कर रहा था, उसके नाम के साथ और उसकी वल्दियत के साथ, यानी आपका फुल नेम, आप अपना नाम सोचें, हर एक अपना नाम सोचे कि मेरा नाम कोई फरिश्ता ले रहा है, मेरे बाप के नाम के साथ पूरा फुल नेम, और वहां पे बता रहा है कि वो तो इस वक्त बैठी भी तिलावत कर रही थी, और वो तो इस वक्त बैठी भी तस्बीह कर रही थी। क्या नसीबे हैं ऐसे लोगों के जिनकी तारीफें वहां हों। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे शौक इस चीज के कर दे कि हमें ये हो कि फरिश्ते हमारी तारीफें आसमानों पे जाके करें, ये हमारी दौड़ बना दे, ये हमारी ख्वाहिश बना दे, ये हमारी तड़प बना दे कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं। अभी तो हमने इसको अपना शौक ही नहीं बनाया ना, अभी तुम्हारी शौक दुनिया में क्या होते हैं, किसी का शौक है बिलियनर बनने का, किसी का शौक ये है कि मैं कोई नामवर खिलाड़ी बन जाऊं, किसी का शौक ये है कि जी मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाऊं, इस कुर्सी पे मैं पहुंच जाऊं। अगर कितने लोगों का ये शौक है, ये हमारी तारीफें आसमानों में फरिश्ते कर रहे हो, और वो फिर सुनते हैं, जब ये नहीं कि सुन के बस वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, वो फिर उसके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह हू अकबर, और अगले रमजान में लैलतुल कदर तक वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। अगले साल जब ये आएंगे दोबारा जमीन पे, फिर ये जाके बताएंगे कि भाई अब वो और बढ़ गया है तो उसके लिए दुआएं, यानी नेकी में बढ़ गया तो उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि वो तो जो काम से गया, तो पिछले साल तो हम उसको बड़ा अच्छा छोड़ के आए थे, अब तो उसकी हालत बड़ी खराब हो गई, पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गया वो, तो वो उसकी दुआ छोड़ देते हैं और उनकी करना शुरू हो जाते हैं जो कि नेकी में आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाला तो किसी की तो वो रिपोर्ट ये देते हैं कि फलां 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 इस वक्त ये काम कर रही थी, जब मैं जब फरिश्ते कहते हैं कि जब हम वहां पे गए तो वो ये कर रही थी, और किसी की वो ये कहते हैं कि वो तो गाफिल हो गया वह, उसने तो छोड़ दिया वह सब कुछ, वो तो फिर पीछे चला गया। तो क्या हमें शौक नहीं कि हमारे चर्चे, हमारी शोहरत, हमारी नेक नामी आसमानों में डिस्कस हो? क्या हमने यहीं के शौक रखे हुए कि यहाँ भी मैं बस फेमस हो जाऊँ, बड़ी मशहूर हो जाऊँ, लोग मुझे पहचानने शुरू हो जाएँ, लोग मेरा नाम जानना शुरू हो जाएँ, मैं कौन हूँ सबको पता होना चाहिए, मेरे नामों की तख्तियाँ लग जाएँ, ये शौक क्या शौक है? असल तो ये बात है कि उन फरिश्तों में चर्चे होने लगे तो वो दुआएं करने लगे। अल्लाह अकबर। और ये नहीं कि उनको भूल गया वह, ये नहीं कि उनको याद ही नहीं कि कौन सी बंदी क्या बातें थी। और फिर ये ना सिर्फ ये कि ये आसमानों वाले फरिश्ते पूछते हैं, बल्कि इससे आगे सिदरतुल मुंतहा का आपको पता है ना, सबसे साथ में आसमान के ऊपर जो जगह है, जो जहाँ पे जहाँ से ये फरिश्ते उतरे थे, जब ये लोग वापस वहाँ पहुँचते हैं तो वो सिदरा भी पूछता है, वो दरख्त भी पूछता है कि लोगों का क्या हाल था, फलां का क्या हाल था, फलां का क्या हाल था, तो सबका बताते हैं वो। जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नहीं बताते लोग इबादत कर रहे थे, ऐसे ही नहीं, आप सोचिए अपना नाम कि आपका नाम कहाँ तक पहुंचा होगा, कितने खुशकिस्मत हैं आप कि आप रात को जाग के जब इबादत कर रहे हैं और पूरी 10 रातें आप इबादत में गुजारते हैं और कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, और जब फरिश्ते आए तो आपको वो ये नहीं देख रहे कि आप टेक्सटिंग कर रही हैं, आप टीवी के आगे बैठी हुई हैं, आप जरा अपना फोन पे और सोशल मीडिया पे मसरूफ हैं, ये नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं, वो देखते हैं कि आप कितनी अच्छी इबादत कर रही हैं, तो आपने सारी चीजों को पीछे कर दिया था, आप इस वक्त सफाइयां करने में नहीं लगी हुई, आप इस वक्त चीजें समेटने में नहीं लगी हुई, चलो रात तो मैं जाग ही रही हूं, ये तो जागने की रातें हैं, जागने की रातों को हमने बस समझ लिया, बस जागे जाओ तो बस और काम करते जाओ, वो ये उनके सामने ये सीन नहीं है, उनके सामने क्या सीन है, या आपको नींद आ भी रही है लेकिन आपने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आपको नींद आ भी रही है लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हैं, आप फिर भी तस्बीह कर रहे हैं, आप फिर भी लगे हुए हैं, आप दुआएं कर रहे हैं, कितनी खुशकिस्मत है फिर आप। फिर ये उस सिदरा को भी एक एक बंदे का हाल बताते हैं, जाहिर है उसको भी मोहब्बत है ना अल्लाह ताला के इन बंदों से जो उसकी इबादत करते हैं, वरना जिससे मोहब्बत ना हो फिर क्या परवाह उनको कि जो मर्जी करते रहे, हमें क्या। फिर उसके बाद वो जो जब दरख्त को पता चलता है, उस सिदरातुल मुंतहा को पता चलता है, तो जन्नत सिदरा से पूछती है कि मुझे भी तो बताओ ना, जो खबर तुम्हें फरिश्तों ने दी है वो मुझे भी बताओ। अब देखिए दुनिया के किसी खत्ते में कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, को किसी का इतनी गुमनामी है कि उसका किसी को पता ही नहीं है, मगर आसमान वालों में उसका कितना अच्छा नाम है। अल्लाह अकबर। फिर सिदरा जन्नत को सारी रिपोर्ट देता है। फिर जानते हैं जन्नत क्या करती है? जन्नत फिर दुआ करती है कि हर एक के लिए जिस जिसकी उसको रिपोर्ट मिल रही है या वो और अच्छा हो गया, उसके लिए रहमत की दुआ करती है जन्नत। और जन्नत ये कहती है कि अल्लाह इसको जल्द मुझसे मिला देना। हम दुआ करते हैं अल्लाह इस लैलतुल कदर में मेरा और आपका नाम भी जन्नत ले और हमारे लिए दुआ करे। आसमानों में हमारा भी नाम गूंजे। अल्लाह हमें उन कुछ किस्मतों में कर दे। क्या नसीब है उन लोगों के जिनके नाम फरिश्ते ले और उनके लिए दुआएं फरिश्ते कर रहे हैं। हम लोगों की मिन्नतें यहाँ पे करते फिरते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। कभी ये भी ख्वाहिश करें फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें, जन्नत मेरी चाहत करे, जन्नत कहे अल्लाह उसको जल्दी मुझसे मिला देना। हम तो जन्नत मांगते हैं, जन्नत हमें मांगने लगे। और जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह ताला को रिपोर्ट पेश करती हैं एक एक बंदे की, अल्लाह की अल्लाह ताला जानता है, फिर भी उनकी हौसला अफजाई है इसमें, फिर भी उनकी खुशकिस्मती के लिए। ये कोई मामूली बात है कि कहाँ कहाँ किस किस का नाम लिया जा रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब पूरा साल हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अगर हम उन खुशकिस्मतों में शामिल होना चाहते हैं। जैसे शादियों की तैयारियां कोई एक दिन पहले थोड़ी करता है, सारा साल से की जाती हैं। इसी तरह जो बच्चे इम्तिहान देने लगते हैं या कोई डिग्रियां लेने लगते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं। एक साल क्या, वो तो कई साल मेहनत करते हैं तब डिग्री मिलती है। तो पूरा साल मेहनत करें ताकि जब लैलतुल कदर आए तो आपको भी इंतजार हो कि अब जब फरिश्ते आएंगे ना और वो मुझे देखेंगे तो फिर जाके उन्होंने मेरी रिपोर्ट देनी है। और क्या रिपोर्ट मेरी लोगों को होगी? ठीक है, दूसरे फरिश्ते तो नहीं जानते, अल्लाह ताला तो जानता है, फिर भी वो चाहता है कि बताया जाए। फिर भी जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह ताला के सामने उन लोगों की सारी कार्रवाई रखते हैं कि वो ये कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि मैंने इस बंदे को या इस बंदी को बख्श दिया। फिर अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हमें भी तो बताओ। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको भी बताते हैं। अल्लाह अकबर। कहाँ कहाँ तक बातें पहुंचती हैं। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत हो इस बंदे के ऊपर और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हो इसके लिए। ये अर्श के उठाने वाले फरिश्ते कहते हैं। तो ये सिर्फ लैलतुल कदर में आपको ये खुश नसीबी मिल सकती है कि आपका नाम ऊपर ऐसे लिया जाए, और कोई टाइम पे नहीं ऐसे हो सकता। तो ये नियत क्यों नहीं कर लेते हम? रमज़ान भी ख़त्म हो भी गया, हमने इम्प्रूव करना है। चलो पिछले साल से नहीं किया, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो आए तो इस साल जिस कंडीशन में उन्होंने हमें देखा है उससे बढ़ के अच्छी में हम हों। मैंने इस हालत पे नहीं रहना। अगर मेरी जिंदगी अगले साल तक है तो मेरी मेरी बेस्ट वहां पे से करो। और रमजान को खत्म करना है तो मैंने उससे बेहतर हालत पे खत्म करना है जिसके साथ मैंने इसको शुरू किया था, ताकि पता चले कि रोजे रखने का, कुरान पढ़ने का, तरावी में शामिल होने का कोई तो असर मेरे पर है। दिन रात की एक समझ लिया, हमने ट्रेनिंग ली है। हमारी सफाई हुई है, भट्टी के अंदर जैसे कोई सफाई की जाती, मैल कुचैल निकाला जाता है, इस तरह हुआ है। तो इसके बाद हमने इससे बेहतर होना है, और उसके बाद उससे बेहतर होना है, और हर दिन हमारी जिंदगी का पिछले से बेहतर हो जाना चाहिए, हत्ता कि वो दिन आ जाए जब अल्लाह ताला से मुलाकात करनी हो, तो फिर वो दिन बेस्ट हो जाए। और रिश्ते तो पहले ही पहचानते हो कि यही वो बंदे हैं जो रातों को जागते थे, जिनके अच्छे चर्चे थे, जिनके नाम से फरिश्ते वाकिफ हों, क्योंकि इनका नाम आसमानों में लिया जाता था। दुनिया में ही किसी की न्यूज़ आ जाए ना कोई बहुत अच्छी, तो सारी दुनिया को हम बताते फिरते हैं, तुम्हें पता है मेरा नाम छपा है अखबार में, उस अखबार को पुराना भी हो जाता है उसको पकड़ के रखे रखते, इतनी अपनी निशानी बना लेते हैं, देखो मेरा नाम आया था अखबार में। अगर किसी का टीवी पे भी कोई खबरों में आ जाए, कोई बड़ा कारनामा उसने सर अंजाम दिया, तो कितना शौक रखते हैं, दुनिया जहान को फोन करके बताएंगे आज मेरा नाम टीवी पे लिया गया। अल्लाह अकबर, ये तो छोटे छोटे इंसान हैं, उन बेचारों को तो खुद भी नहीं याद रहना कि आपका कहीं नाम आया था। लेकिन देखें, इंसानों से ज्यादा कोई जो नेक मखलूक है, जो अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते, उन तक जब नाम पहुंचता है वो भूलते नहीं है। इन्हों तो अभी देखना है तो 2 दिन में उनको याद भी नहीं रहना किसका नाम कहाँ पे आया था, लेकिन वो अगले साल तक याद रखते हैं, अगले साल तक दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह हू अकबर। उम्मीद है मेरी बातें आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होंगी और आप सारी बातों को याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने जैसे बात की थी ना कल के, हमने नियतें करनी है, इरादे करने हैं, हमने वाकई पक्के इरादे करने हैं, तो वो तो इरादे बांध लिए ना आपसे, कुछ ना कुछ तो इरादे करें, कुछ ना कुछ तो नियतें करें, कैसे बेहतर करूं अपने आप को, और जेन्युइनली करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि चलो आज तो कर ही लिया, एक नेकी तो मिल जाएगी इसके ऊपर, उसके बाद किसने देखा, होना तो मेरे से वैसे भी नहीं, ये नहीं, सच्चे दिल के साथ, क्योंकि ये अल्लाह ताला देख रहा है दिलों को, और वो जानता है हम किस नियत से, किस इरादे से क्या बात कर रहे हैं, और किस तरह, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरी नमाजें उससे बेहतर करनी है, कुरान उससे बेहतर करना है, अखलाक उससे बेहतर करना है, मामलात लोगों के साथ इससे ज़्यादा अच्छे करने हैं, और फिर मैंने इसको याद रखना है, अपने गोल्स बनाए, ये मेरे गोल्स हैं, इनको मैंने अचीव करना है, और फिर बढ़ते चले जाएं ईमान के अंदर और नेकी के अंदर, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर जिंदगी रही, जब वो आए तो फिर जाके वो बताएं कि वो तो पिछले साल तो बस एवरेज थी, अब तो इससे भी ज्यादा बढ़ गई, अब तो नेकी में बहुत तेज दौड़ रही है। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करते, जिनके अच्छे जिक्र हों दुनिया में भी और आसमानों पर भी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इतनी देर में आप सोचें जो मैंने आपको बातें कही हैं, अपनी इस वक्त की कंडीशन इवेल्युएट करना और अपने गोल्स को सोचना कि कहाँ तक मैंने पहुँचना है। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ऐसे ही रहेंगे, फिर बस ज़िंदगी तो गुजरी जाएगी, कोई दिन आपका वेट नहीं करेगा, आपका आपकी बर्फ़ पिघलती जा रही है, ये बंद नहीं होगी, ये और तेज़ हो गई है, कुर्बे कयामत में वक्त तेज़ी से गुजरेगा, साल पे साल, महीने पे महीना, हफ्ते पे हफ्ता, दिन तो ऐसे है कि बस चंद सेकंड का, ये इस तरह गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और नेक्स्ट रमजान आ जाएगा, बी स्मार्ट इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।